Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Shiva Mahimna Stotra, presented by Swami Sri Muktanandji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
क्योंकि आप ही तो संहार के देवता है ना, तो आप संहार के देवता हैं, आप सबको मृत्यु दंड देते हैं, तो आपको तो गालियां देते होंगे सारे के सारे लोग। उन्होंने कहा, पार्वती मैं ऐसा खेल खेलता हूं किसी को पता ही नहीं चलता, मेरे को कोई याद ही नहीं करता। उस समय दूसरों को गालियां देते रहते हैं। उन्होंने कहा कैसे? कहा चलो पृथ्वी लोक में चलते हैं। पृथ्वी लोक में ले आए पार्वती जी। उन्होंने कहा देखो ये आदमी ना, अभी थोड़ी देर में मैं इसको मारूंगा, लेकिन कोई मुझे गाली नहीं देगा। महाराज वो आदमी जा रहा था, रास्ते में इतनी देर में दो सांड, सांड समझते ना, हाँ हाँ वृषभ, हाँ दो लड़ पड़े बैल, दो बैल आपस में लड़ पड़े। लड़ते लड़ते एक बैल ने उस आदमी के सींग मार दिया। ये गुजराती वाला सींग नहीं था, आ गुजराती नु सींग नहीं। महाराज लड़ते लड़ते सिंह मार दिया, आदमी मर गया। सारे लोग करे हो इस बैल ने बहुत बुरा किया, मारा किसने, नाम किसका आ रहा है। महाराज जी आदमी सुबह सोता है तो सोता रहता, उठता ही नहीं, क्या कहते हैं महाराज हार्ट अटैक हो गया। कोई लेता है संहार के देवता का नाम? कोई लेता है? तो काम तो वही करते हैं सारा। यानी आप विचार करो, जन्म देना तो बात दूसरी, मृत्यु के समय भी वही खेल खेल रहे हैं, क्रीड़ति नृत्य वही कर रहे हैं, लेकिन उसको कोई देख नहीं रहा है। कितने गंभीर होंगे वो, किसी को नहीं पता। कोई एक्सीडेंट में मरता है, कोई कहते महाराज ठीक ठाक थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन उम्र हो गई थी। और कुछ बहाना नहीं मिलेगा किसी का नाम लेने का, तो क्या कहेंगे, उम्र हो गई थी। तो सारा खेल खेलते हुए भी वो गंभीर हैं, बड़े गंभीर हैं। तुषारादि संकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम। देखो एक बार हमारे स्वामी गिरीशानंद जी महाराज कथा करते रहे थे भागवत की, रामायण की। तो रामायण की कथा करते हुए बोले, हमारे राम इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि वो समुद्र के किनारे हुए तो मछलियां भी और जीव जंतु भी उनको देखने के लिए खड़े हो गए, तो लंका पार कर गए, दूसरा सेतु बन गए, लेकिन उनके रूप को देखते रहे। अब वो थोड़ा चुटकी लेते कृष्ण को लेकर के कथा में स्वाभाविक ही। तो उससे जब हम बीच में सूप पीने के लिए आए, तो हमने कहा महाराज हमारे शिवजी इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, उनके सौंदर्य को देखने लगे तो जड़ और चेतन स्तब्ध रह गया, प्रकृति का कार्य रुक गया, सृष्टि का व्यापार रुक गया, कोई कुछ करने वाला ही नहीं था, उन्हीं को देख रहे थे। तो फिर उन्होंने भस्म रमाई, भाई कुछ छिप जाए सौंदर्य, विनोद है ना ये, तो उन्होंने भस्म रमाई, लेकिन भस्म में भी उनका सौंदर्य जो का त्यों बना रहा। फिर उन्होंने भूत प्रेतों को बुलाया कि इससे डर के लोग चले जाएं, तो जब भूत प्रेत आए तो संसार चलने लगा। नहीं खरे तो हंसने की बात है, लेकिन सुंदरता जो है ना, सुंदरता, सुंदरता कामदेव को सबसे ज्यादा सुंदर बताया है। वो होना भी है, क्योंकि अगर कामदेव में सौंदर्य नहीं होगा तो सृष्टि नहीं चलेगी। अगर आकर्षण ही नहीं है, अगर आकर्षण ही नहीं तो सृष्टि कैसे चलेगी। तो कामदेव को सबसे ज्यादा सुंदर बताया, कामदेव को सबसे ज्यादा सुंदर बताया, और यहां तो करोड़ों करोड़ों कामदेव से भी सुंदर है, क्योंकि कामदेव का सौंदर्य, कामदेव का सौंदर्य शिवजी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सका। भस्मावशेषम मदनम चकार, एक ही दृष्टि की थी कि वो भस्म हो गए, एक ही बार नजर डाली थी, एक ही बार, बस खाली उनका नाम नाम रह गया इतिहास में कि कामदेव भी कोई थे, है नहीं। फिर उनको कहा ठीक है आज से तुम्हारा नाम हो जाएगा अनंग अंगरहित और इसी रूप में तुम काम करोगे। तो मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम, हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों कामदेव से भी सुंदर उनका शरीर है। इसका अर्थ इतना ही है, आप इसका अर्थ ये मत लगाना करोड़ों कामदेव इकट्ठे करने हैं, इसका अर्थ इतना ही अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है साहित्य में। कौन सा अलंकार कहलाता है? अतिशयोक्ति, यानी जब हम किसी की उपमा नहीं ढूंढ सकते, किसी की उपमा नहीं ढूंढ सकते तो हम क्या कहते हैं कि राम जैसा गंभीर तो राम ही है, राम जैसे गंभीर। तो इसका अर्थ है कि राम इतने गंभीर हैं, इतने गंभीर हैं कि उनसे ज्यादा गंभीर और कोई हो नहीं सकता, वही उसका अर्थ है। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। तो ये जो अतिशयोक्ति अलंकार है उसका अर्थ इतना होता है कि उनके तुलना में कोई है ही नहीं, कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। तो मनोभूत कोटि, मनोभूत माने कामदेव, खाली खाली वो शरीर तो खत्म हो गया। और एक और बात बताएं, तृतीय नेत्र है ना, तृतीय नेत्र आजकल तो आपके पास है या नहीं है लेकिन टीवी में जरूर है, थर्ड आईज है ना। तृतीय नेत्र भगवान शिव ने एक ही बार खोला था, कितनी बार खोला था? दूसरा उन्होंने तीसरा नेत्र खोला वैसा हमने पढ़ा नहीं, आपने पढ़ा हो तो मालूम नहीं। ये बात अलग है कि टीवी में हर रोज खुल रहा है तीसरा नेत्र, वो टीवी में ही खुल रहा है लेकिन भगवान शिव का नहीं खुला था, एक ही बार। नहीं तो उसको प्रलय के समय खोलते हैं। कब खोलते हैं? प्रलय के समय। वो चाहते तो वृकासुर के समय तीसरा नेत्र खोल सकते थे, चाहते तो खोल सकते थे, अनेक परिस्थितियां ही, लेकिन वो मुस्कराते रहे, ऐसा उनका दिव्य शरीर है। लसत भाल बाओ स्फुरन मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा, और उनके गंगा जी क्या है? देखो गंगा जी का बड़ा महत्व है शास्त्रों में, हम आपको बताएं। एक बार गंगा जी को अभिमान हो गया, क्या हो गया? अभिमान हो गया कि मेरा वेग इतना तेज है मुझे कोई पृथ्वी पर धारण ही नहीं कर सकता। सागर ने कहा, सागर ने कहा मां वो व्यवस्था तो मैं कर लूंगा। बड़ा अभिमान था अपने वेग पर गंगा जी को। शिव जी की आराधना की, जल्दी से प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा समस्या क्या है? सागर ने कहा ये समस्या है, हमारे पूर्वज हैं वो दुखी हैं, गंगा जी कह रही कि मेरे वेग को कोई धारण ही नहीं कर सकता। शिव जी ने कहा इतना अभिमान है उसमें, उसको कहो आ जाए ऊपर से, मैं धारण करूंगा। और महाराज क्या हुआ? जटा कटा हो संभ्रमन निलिंप लिंप निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत धगत जलल ज्वलल ललाट पट पाव के किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षण मम। उन्होंने जटा की कटाहा बना ली, कटाहा जानते ना, कढ़ाई जिसमें आप हलवा बनाते हैं, आजकल तो फ्राई पैन आ गया ना, जटा की कढ़ाई बना ली, जटा कटाहा। उन्होंने कहा आने दो अब इसको, और जैसे ही गंगा जी वहां पर आई तो मारा जन 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 करती वहीं घूमने लग गई। जटा कटाहा संभ्रमन निलिंप लिंप निर्झरी, अब वो घूम रही है चक्कर काट रही है लेकिन उसको कहीं रास्ता नहीं मिल रहा कि नीचे भी आ जाए, कहीं रास्ता नहीं मिल रहा। शंकर की जटाओं में उलझ करके रह गई, शंकर की जटाओं में। अब समस्या सागर के सामने तो वही है, उन्होंने फिर हाथ जोड़े, महाराज ये तो गंगा जी की बात है पर मेरा भी तो देखो। भगवान ने कहा इसको बड़ा अभिमान था अपने वेग पर, बड़ा अभिमान था इसको वेग पर। उन्होंने कहा ठीक है लेकिन मेरी तरफ ध्यान दो महाराज, मेरे पूर्वजों का उद्धार होना है। तो फिर शंकर ने एक जटा को नीचे किया और वही सागर में आकर के और सागर के पूर्वजों के उद्धार किया। बड़ी महिमा है। भगवान शंकराचार्य ने बहुत सुंदर बात की गंगा जी के बारे में। वो कहते हैं दिव्य नदी है ये, आपको मालूम तो इसकी उत्पत्ति। जिस समय राजा बलि आपके गुजरात में, मेरा भी है गुजरात, ऐसा नहीं समझना, लेकिन आपके कहने से थोड़ा आपको लगाव ज्यादा हो जाएगा। हम तो सन्यासी में तो सबसे लगाव बराबर, ना किसी से कम है ना किसी से ज्यादा है, प्रेम है। प्रेम अलग बात है, देखो एक है प्रेम प्रेम और एक है राग, एक है प्रेम और एक है राग। प्रेम अनिर्वचनीय होता है और राग चिपक जाने का नाम होता है ना। तो इसलिए भक्ति में कहते हैं अनुराग, भक्ति में क्या कहते हैं, पहले भगवान से राग करो फिर उनकी चिपक जाओ। पर हम संसार की बात नहीं कर रहे, संसार में भी राग होता है ना, तो एक अनुराग भक्ति में होता है अनुराग है ना, और एक होता प्रेम। प्रेम तो तत्स्वरूपता होती है। प्रेम क्या होता है, तत्स्व भगवत स्वरूप क्या है, प्रेम। भगवत स्वरूप क्या है, प्रेम। और भगवान की भक्ति क्या है, अनुराग है। हाँ उसको प्रेम भी कहते हैं। तो हम तो प्रेम है, सभी अपना ही है, लेकिन आपके भृगु कच्छ भड़ोच में नर्मदा के तट पर, नर्मदा जी के, नर्मदा बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन है, नर्मदा जी के तट पर बलि यज्ञ कर रहे थे और अदिति ने वरदान मांगा ही था, तो भगवान ने वामन अवतार लिया ही था, तो नर्मदा के तट पर भगवान याचना करने के लिए आए बलि के पास। देखो भगवान युद्ध छोड़कर के आए तो गुजरात में, और भगवान भीख मांगने के लिए आए, ये गुजरात की महिमा है, है? गर्वी गुजरात है ना, गर्वी गुजरात, देखो ये गुजरात की महिमा है ना। युद्ध छोड़ के भागे तो कहीं जगह नहीं मिली भागने को, गुजरात आए, भीख मांगने के लिए आए तो भी। तो आज भी ऐसा ही, टाटा हो बिड़ला हो, भाग करके कहां रहे, गुजरात ही आ रहे। तो उन्होंने कहा महाराज भिक्षा दो। पहले तो प्रशंसा की बलि की, वो लंबी कहानी में सुनाता नहीं, थोड़ा संक्षेप में करूंगा। बलि ने दान दिया, दान दान दिया। दान तो उन्होंने अपने तीन पैर ही मांगे थे, लेकिन जब मांगे थे तब छोटे थे, और जब नापने लगे तो बलिम छलयते, अरे तो छली है भाई, इसने बलि को छल दिया। अच्छा वो जो है ना, वो भ्रमर गीत, भ्रमर गीत, भ्रमर गीत में गोपियों ने कहा कि रे भौरे तू हमारे पास मत आ, तू कपटी है। तो उसने पूछा कि इसने कपट कब किया, तो बोले कौन से युग का प्रमाण चाहिए, युग बताओ, कपट कब नहीं किया, इसने कौन से युग का प्रमाण चाहिए। सतयुग में बलि के साथ कपट किया है ना, बलिम छलयते। महाराज नापने लगे तो आहा त्रिविक्रम हो गए, क्या हो गए। एक और बात है, देखो मूल में विकार को सुधारोगे तो इनाम होगा, बड़ा काम कर लोगे, मूल में विकार नहीं सुधारोगे तो बड़ा नाम होने वाला। यही एक अवतार है जहां भगवान ने सबसे बड़ा रूप धारण किया था। कौन सा रूप धारण किया था, सबसे बड़ा रूप धारण किया था ना, लेकिन कहते क्या है, वामन। क्यों, मूल में ही है ना छल है। अच्छा तो भगवान की कथा है, लेकिन ये तो मैं आप लोगों को सुधारने के लिए बता रहा हूं। भगवान तो किसी के साथ छल नहीं करते, तो भक्तों के साथ लीला करते हैं ना। खैर जब दूसरा पैर गया ब्रह्मांड को लोक से परे, तो उनके नाखून से ब्रह्मांड फट गया। तो महाराज ये वहां पर जल विराजमान था, ये ब्रह्म द्रव पहले से ही विराजमान था। तो महाराज जल फटा तो ये जल रिसने लग गया, जैसे छत नहीं क्रैक हो जाती तो पानी टपकता है, वो क्रैक हो गया तो पानी टपकने लगा। ब्रह्मा जी ने सोचा ये अच्छा द्रव आ रहा है, ब्रह्म द्रव अपने कमंडल में ले लिया, और फिर विचार करने लगे ये जो चरण है ये ब्रह्मलोक में होते नहीं है, ये तो पृथ्वीलोक में ही होते हैं। भगवान अवतार कहां लेते हैं, हां ब्रह्मलोक में नहीं लेते। उन्होंने कहा मौका है जल्दी से धो लो, प्रक्षालन किया। तो ये जो गंगा जी है, ये गंगा जी पहले से ही ब्रह्म द्रव के रूप में विराजमान है। बस वो जो क्रैक हो गया ना, क्रैक ब्रह्मांड का आवरण, वो जो क्रैक हुआ वहां से निकल आया, और मेरे ख्याल से वहां किसी ने मरम्मत की नहीं आज तक, इसलिए आज भी आ रहा है। वेल्डिंग की हो, मरम्मत की हो, कहीं कुछ लगाया हो, ऐसा लिखा तो है नहीं। क्रैक हुआ इतना तो लिखा है, ब्रह्मांड का आवरण क्रैक हो गया, लेकिन उसको किसी ने ठीक किया हो, भाई कोई सीमेंट लगाई हो वहां पर या कुछ और लगाया हो, ऐसा लिखा तो है नहीं। तो इसलिए वो ब्रह्मद्रव आज भी, भगवान शंकराचार्य ने कहा बहुत सुंदर, कुतो वीचिर वीचिस्तव यदि गतालोचन पथम त्वमा पीता पीतम भरपुर निवासम वितरसी त्वदोत्संगे गंगे पतति यदि कायस्तनुभृताम् तदा मातशात क्रतव पदलाभोप्यति लघु। कहते हैं कि हे मां, अगर आपकी वीची का एक बार दर्शन हो जाए, वीची तो समझते ना, तरंगे, वीची किसे कहते हैं, तरंगों को, अगर एक बार आपकी वीची का दर्शन हो जाए तो फिर उसको अवीची नहीं मिलती है। अवीची कहते हैं अंधकारमय नरक को। अवीची किसे कहते हैं, अंधकारमय नरक को। यदि आपकी एक बार तरंगों के दर्शन हो जाएं, तो आपकी एक बार तरंगों के दर्शन होने के बाद उसको कभी भी अंधकारमय नरक की प्राप्ति। कुतो वीची वीचिस्तव यदि गता लोचन पथम, नेत्रों में ही लोचन पथ माने दर्शन ही हो जाए तो। त्वमा पीता पीतम भरपुर निवासम वितरसी, और एक बार यदि कोई आपका पी ले, आपीता माने ईषत पीतम आचमन, एक बार यदि कोई आपका आचमन कर ले, त्वमा पीता, एक बार यदि कोई आपका आचमन कर ले तो पीताम्बर पुर निवासम वितरसी। पीताम्बर कौन है, विष्णु भगवान, और उनका पुर कौन है, अरे वैकुंठ। पीताम्बरपुर माने वैकुंठ है, और उसमें निवास यानी रहने को घर मिल जाएगा आपका। बॉम्बे में नहीं रहोगे आप, फिर आपको कहां रेजिडेंस मिलेगा, वैकुंठ में आपको पक्का मकान मिल जाएगा। और ये देखो, हम तो देहात से आते ना, हम ये जो फ्लैट फ्लैट सिस्टम है ना, तो ऐसा लगता है जैसे आदमी कबूतर की तरह गुटरगु गुटरगु रह रहा हो। नीचे देखेगा ऐसे नीचे खड़ा हुआ व्यक्ति हो सड़क पर, और ऊपर कोई फ्लैट से नीचे देख रहा हो, तो उसे तो ऐसा लगेगा जैसे कबूतर देख रहा है ना। अरे अपनी जमीन नहीं है ना, अपनी जमीन नहीं, अपनी छत नहीं, कुछ भी नहीं अपना, लेकिन भाई परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, और व्यक्ति को रहना है। इसलिए जैसी परिस्थितियां आए, उन परिस्थितियों में रहो, लेकिन परिस्थितियों के साथ रहते हुए भगवान को मत भूलो, भगवान को, भगवान को मत भूलो। हाँ, तो कहते हैं कि त्वमा पीता पीतम भरपुर निवासम वितरसी, फिर आपको फ्लैट नहीं मिलेगा वहां, ध्यान रखना, क्योंकि वहां फ्लैट सिस्टम नहीं है। अरे कोई कोई पहुंचता है, बहुत जमीन पड़ी है ना। फिर ये माते, अगर आपका एक बार कोई आचमन कर लेता है तो आप उनको वैकुंठ प्रदान कर देती है। और त्वदुत्संगे गंगे यद पतति कायस्तनुभृताम, और हे मां गंगे, यदि आपकी उत्संग में, उत्संग कहते गोद में, अगर यानी आपके अंदर कोई एक बार स्नान भी कर लेता है, तो तनुभृताम काय पतति, ये मनुष्यों का शरीर अगर आप में गिर जाता है, मरने के बाद नहीं जीते जी, अर्थात यदि आप में कोई एक बार स्नान भी कर लेता है तो, तदा मातः हे मां उस समय शातव कृत पद लाभोप्यति लघु। शतक्रतु कहते हैं इंद्र को, शतक्रतु किसे कहते हैं, इंद्र को, और शतक्रतु का भाव ही शातक्रतव हुआ है, अर्थात इंद्र का पद भी उस समय फीका लगने लग जाता है। यदि आप में एक बार कोई स्नान कर ले, तो आप में स्नान करने के बाद इंद्र का पद भी आप फीका लगने लग जाता है। कुतो वीचिर वीचिस्तव यदि गतालोचन पथम त्वमापीता पीताम्बरपुर निवासं वितरसि त्वदुत्संगे गंगे पतति अधिकायस्तनुभृताम् तदा मातशातक्रतव पदलाभोप्यति लघु। और भी भगवान शंकराचार्य ने तो बहुत लिखा गंगा जी के ऊपर, वो लिखते हैं गंगे त्रिलोक्य सारे सकल सुरवधू धूत विस्तीर्ण तोये। हे गंगे तू संपूर्ण लोकों का सार है, क्यों ब्रह्मद्रव है ना, ये ब्रह्मद्रव है, ये विष्णु जी ने बनाया नहीं, वो तो ब्रह्मांड कटा फट गया तो वहां से पहले ही मौजूद था, वहां से क्रैक हो गया तो पानी आ गया, ये ब्रह्मद्रव है। गंगे त्रैलोक्य सारे सकल सुरवधू धौतवति विस्तीर्ण तोये पूर्ण ब्रह्म स्वरूपे हरिहर हरिचरणो हरिरज चरणो क्षालिनी स्वर्ग मार्गे। आप तो पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है, क्या है ये ब्रह्म स्वरूप है। प्रायश्चित्तम यदि स्यात् तव जललकणिका ब्रह्महत्यादि पापे। अगर आपका जल का एक कण भी मिल जाता है, उसका पान कर लिया जाता है, तो ब्रह्महत्या जैसे पापों का प्रायश्चित हो जाता है, प्रायश्चित हो जाता। कस्त्वाम स्तोतुम समर्थस्त्रिजगह गहरे देवी गंगे प्रसीद। आपकी स्तुति कौन कर सकता है मां गंगे, आप तो तीनों लोकों के पापों का प्रक्षालन करने वाली है। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी, देखो शब्द है त्रिभुवन तारिणी, शब्द पर ध्यान दीजिए, शंकराचार्य जी का स्तवन है, ये सब शंकराचार्य जी के पद बोले मैंने गंगा जी पर। हाँ, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौलि विहारिणी विमिले मम मति रास्ताम तब पद कमले। बस आपके शरण कमल में मेरी मति हो जाए। तो ये जो भगवान शंकर हैं, इसके लिए क्या कहा, लसत भाल बाना वो नहीं स्मरण मौली गंगा कल्लोलिनी चारु गंगा, देखो स्मरण मौली कल्लोलिनी चारु गंगा, ये जो गंगा जी है ये आपके आपके जटाओं में विराजमान है महाराज। अच्छा गंगा क्या है, देखो एक तो हमारे यहां तीन रूप होते हैं, एक तो गंगा जल है, गंगा वो है भौतिक रूप, वो क्या है भौतिक रूप। एक गंगा देवी है, वो क्या है, हम एक बार हरिबाबा बांध धाम, हरिबाबा का तो नाम सुना होगा आपने, उड़िया बाबा हरिबाबा अखंडानंद जी महाराज, तो उड़िया बाबा जी और ये सब करपात्री जी वगैरह हरिबाबा का बहुत मान सम्मान करते, नाम तो कुछ उनका और था लेकिन वो सदा हरि कीर्तन करवाते रहते थे। तो हरिबाबा बांध धाम में हम एक बार चले गए, उन्होंने बुलाया हमें, तो हम बांध पर घूमने लगे थे, गांव के पास पहुंच गए, हमें मॉर्निंग वॉक का शौक था, तो वहां बैठे बैठे हमें बताया कि यहां एक महात्मा रहते थे, वो गंगा जी में ही रहते थे, गंगा जी में, गंगा जी जाती वहां से, गंगा जी में रहते थे। तो एक दिन गंगा जी ने उनको कहा कल तुम सुबह अपना स्थान छोड़ देना क्योंकि मैं विकराल रूप लेकर के आऊंगी, दर्शन दिया गंगा जी ने। तो उन्होंने कहा मां तुम ऐसा क्यों करती हो, कितने ही तबाह हो जाते हैं, मवेशी मर जाते हैं, पशु मर जाते हैं, घर से उजड़ जाते हैं, परिवार चले जाते हैं। तो मां ने कहा ये लीला प्रभु की ये तुम नहीं समझ सकते, तुम यहां से कल चले जाना। तो देवी के रूप में, देवी के रूप में महात्माओं को दर्शन देती है जो उनकी उपासना करते। तो एक तो गंगा जल है भौतिक रूप से, तो शुद्धि की आवश्यकता है भौतिक जल की, हम जो गंगा शोधन की बात करते हैं ना, शुद्धि की आवश्यकता है भौतिक जल की। एक गंगा देवी है और एक आध्यात्मिक गंगा है, अध्यात्म गंगा। अध्यात्म गंगा क्या कहा भगवान शंकराचार्य जी ने, कहा काशी क्षेत्रम शरीरम त्रिभुवन जठरे व्यापिनी ज्ञान गंगा। ये काशी हमारा शरीर है, काशी हमारा, और तीनों लोकों में जो व्यापक है, तीनों लोकों में जो व्यापक है, ऐसी जो ज्ञान है वो गंगा है। तीनों लोकों में व्यापक कौन सा ज्ञान है? केवल परमात्मा। कौन सा ज्ञान है? परमात्मा। ये जो परमात्मा है अथवा परमात्मा का ज्ञान है, यही गंगा है। परमात्मा का ज्ञान ही गंगा है। स्फुरन मौलिकल्लो लिनी चारु गंगा, यही गंगा है, यही गंगा है। जो ज्ञान है यही गंगा है, और सारा का सारा ज्ञान जो है वो भगवान शिव से ही प्राप्त हुआ है। आप कहते हैं कृष्णम वंदे, कहते हैं ना। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, सारा का सारी जो विद्या है वो कहां से आई है? बताओ, शिव से ही आई है ना, शिव से ही आई है ना। हमारे उमेशानंद जी कह रहे थे जगत गुरु कैसे हो जाएंगे, वो मुसलमान उनको मानते नहीं, कह रहे थे ना, ईसाई उनको मानते नहीं, तो जगत गुरु कैसे हो जाएंगे हैं? लेकिन मानते तो नहीं ना उसको, जरूरस्तर उनको नहीं मानते, तो फिर जगत गुरु कैसे हो जाएंगे? तो देखो, ये तो एक भौतिक है। ये क्या है? भौतिक है। कृष्ण जी के समय में भी कृष्ण को सब नहीं मानते थे। जब कृष्ण का अवतार था तब भी कृष्ण को सभी, अगर सभी मानते तो दुर्योधन उनकी बात ही मान लेता ना, महाभारत होता ही नहीं। लेकिन वहां जगत गुरु कहने का अर्थ है कि तात्विक दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से जो कुछ भी ज्ञान आया है, विद्या, वो सारे की सारी भगवान से ही आई है। इसलिए तात्विक दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से जो कुछ है वो भगवान शिव से प्रकट हुआ है। तो स्फुरन मौलिकल्लो लिनी चारु गंगा लसत भाल बालेन्दु कंठे। आहा, अच्छा देखो, सांप को देख के सब डर जाते हैं ना, भाई हम भी डर गए, इसलिए कल सुबह तक उनको वहीं रहने दिया जाए, है ये ना। इसलिए अशेष चर्चा भगवान शिव की और शिव महिमा की कल करेंगे, बड़ा आनंद आ रहा है, श्रावण मास है, और आज हम तो मधुसूदन वाला को मिस कर रहे हैं, है ना। ओम शांति शांति शांति।